صفا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آج کی کلاس میں ویسے تو اگلا ہم نے ٹاپک پڑھنا شروع کرنا ہے اس صورت میں، لیکن اس سے پہلے جو پچھلی کلاس ہوئی تھی اس کے اندر کچھ بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کے مسائل ڈسکس ہوئے تھے، تو اس کا ہم اوور ویو بھی کریں گے، اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے ان میں سے کوئی بات تو ابھی پوچھ لیجیے. سمری ملی تھی لوگوں کو؟ کس کس نے سمری پڑھی ہے؟ آپ سے پوچھیں کیا تھا اس سمری کے اندر. جی، پچھلی کلاس کی سمری پڑھی ہے کسی نے؟ ریز ہینڈ کا آپشن ہے آپ کے پاس بتانے کے لیے. خیر، جو بتائے گا وہ اچھی بات ہے، ورنہ ہم نے پڑھنی تو ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو ہم ذرا سمری پہلے پڑھتے ہیں پچھلی کلاس کی. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ داؤد صاحب نے پڑھی ہے. اچھا، اس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا پچھلی کلاس کا کہ اللہ کین یوز ہز کریشن ٹو گیٹ ہز ورک ڈن، سچ ایز اینجلز، ہیومن بیئنگز، جنز، اینیملز اور ایون انسیکٹس. ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی اپنا کام لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لیں. انسان اگر اللہ کا کام نہیں کریں گے، کیونکہ انسان کو تو اللہ نے چوائس دی ہے نا کہ بھئی ہم اللہ کا کام کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے، کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. ٹھیک ہے، اور نہ کرنے کے اوپر پھر پنشمنٹ بھی ملتی ہے. تو ہمارے پاس تو چلے چوائس ہے، تو ہم کبھی نہ بھی کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کرنا یہ کام. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کروانا چاہے نا تو پھر وہ کسی سے بھی کروا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ ہم نہیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی بہت ساری مخلوق ہے، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک انسان اگر منع کر دے تو کوئی اور نیک آدمی جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا کام کروا لیں. ٹھیک ہے، تو ہم کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے کام رک جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے کام کبھی نہیں رک سکتے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ تھا کہ آداب یعنی ایتھکس فار آر سینئرس از این اسینشل پارٹ آف آر دین. ٹھیک ہے، سینئرس کا لفظ یہاں میں نے کیوں استعمال کیا تھا سمری کے اندر؟ کیونکہ اس میں سارے بڑے آ جاتے ہیں، ہم سے بڑا جو بھی ہے وہ سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں. ہمارا ایون ہمارے بڑے بھائی بھی آ جاتے ہیں، بڑی بہن بھی آ جاتی ہے، اور اوپر چلیں تو ہمارے ابو اور امی بھی آ جاتے ہیں، اور اوپر چلیں ہمارے ٹیچرز بھی آ جاتے ہیں، ہمارے اسکالرز بھی آ جاتے ہیں. رائٹ، اسکالرز، علماء اور جو ہمارے مشائخ ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، اور ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہمارے سینئر میں آ جاتے ہیں. ہم سے بڑے ہیں نا سارے کے سارے، اور سب سے بڑے کون ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ خود ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی سینئر میں آ جاتے ہیں، اور ہمارے بڑے بھائی یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک سارے ہی ہمارے سینئرز ہیں. تو ایتھکس یعنی آداب جو ہیں وہ سینئرس کے ساتھ رکھنا، اچھے آداب کے ساتھ پیش آنا، یہ سب کے یعنی یہ ہمارے دین کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ خضر علیہ السلام نے یہاں پہ بات کری تھی कि अल्लाह ताला के लिए जो बात करी तो जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो अल्लाह ताला की तरफ मेंशन करी, एसोशिएट करी या एस्क्राइब करी, अल्लाह ताला की तरफ एस्क्राइब करी, और जो उसमें से नेगेटिव बात थी वो अपनी तरफ एस्क्राइब करी। ठीक है, तो ये अदब था। अब इस पे एक क्वेश्चन कोई कर सकता है कि आप सीनियर्स बोल रहे हैं तो क्या हम जूनियर्स के साथ बेअदबी से पेश आए? जूनियर्स के साथ बेअदबी करना जरूरी है क्या कि सीनियर्स के साथ अदब करें और जूनियर्स के साथ ना करें? बिल्कुल नहीं, ये मतलब नहीं है। ठीक है, बल्कि जूनियर्स के साथ भी हमने अदब से पेश आना होता है, लेकिन जो हमसे जूनियर होते हैं तो कभी उनकी ना हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उनकी गलत बात की इसलाह करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो जो ट्रेनिंग की नीयत से या टीचिंग की नीयत से, ट्रेनिंग एंड टीचिंग, तो ट्रेनिंग और टीचिंग की नीयत से कभी हमें उनके साथ जो है वो सख्ती का मामला करना पड़ता है। ठीक है, तो चूंकि सख्ती का मामला करना पड़ता है, अब सख्ती तो अदब नहीं होता ना। ठीक है, तो जाहिर है सख्ती के लिए तो फिर आपको जरा सा बेअदबी भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने सिर्फ सीनियर का लफ्ज इस्तेमाल किया था कि सीनियर्स के साथ आप सख्ती नहीं कर सकते, चाहे वो कोई गलत काम भी कर रहे हो ना, आप उनके साथ सख्ती नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से दिस इज अ रूल कि सीनियर्स के साथ हमने अदब से पेश आना है, जूनियर्स के साथ ये रूल नहीं है। ठीक है, कभी आपने अदब से पेश आना है, कभी आपने उनके साथ सख्ती करनी है, लेकिन वो सख्ती भी उनकी ट्रेनिंग और टीचिंग की नीयत से करनी होती है। इस वजह से हमने यहाँ पर सीनियर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तीसरा पॉइंट था कि व्हाट मेथड डिड अल्लाह यूज टू कम्युनिकेट विद हिज प्रॉफिट्स, नेम थ्री एज डिस्क्राइब्ड इन द क्लास। तो इसका जवाब जो है वो कुछ लोगों ने दिया लेकिन काफी लोगों ने नहीं भी दिया, तो ये तो गलत बात है भाई कि आप लोग तो जवाब ना दें, तो जवाब तो देना चाहिए ना। ये भी एक खिलाफ अदब बात हो जाती है कि भाई टीचर आपसे कोई सवाल करे और आप कोई जवाब ना दें। ठीक, तो इसका जवाब जो है जो लोग दे चुके हैं तो उनको तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है जिन्होंने जवाब दिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं जवाब दिया तो वो अगर कोई बताएं कि तीन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अल्लाह एंड इज प्रॉफिट या फ्रॉम अल्लाह टू द प्रॉफिट क्या बताए थे, तो यहाँ पे कोई लिखें जब तक हम आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट था पिछले क्लास के अंदर कि डेस्टिनी यानी तकदीर इज ऑफ टू लेवल्स, लेवल्स होते हैं तकदीर के, एक लेवल था तकदीर मुबरम और दूसरा था तकदीर मुअल्लक, मुअल्लक। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था और ऐसा था कि जिसका के बड़े बड़े लोगों को मालूम ही नहीं होता। ठीक है, इस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि भाई इज एवरीथिंग रिटन इन डेस्टिनी एंड इफ एवरीथिंग इज रिटन देन हम क्या कर सकते हैं, हमें करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, और फिर डेस्टिनी जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकती क्या, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस एक पॉइंट के अंदर कवर हो जाती हैं। ठीक है ना, दिस वन पॉइंट आंसर्स ऑल ऑफ दीज कन्फ्यूजन्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जी, लिखा आप लोगों ने एंजल्स, रेवलेशन, सही, रेवलेशन तो एंजल के जरिए से जो आती है यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से, उसी को रेवलेशन कहा जाता है। और लिखा इन्होंने बॉयज में ड्रीम्स, हाँ, तो ड्रीम्स वाज द अदर कम्युनिकेशन मेथड, वन वाज जिब्राइल अलैहिस्सलाम, द अदर वाज ड्रीम्स, और तीसरी क्या चीज़ थी, तीसरा क्या तरीका है जो लगता है कि खजर अलैहिस्सलाम को वही वाला तरीका यूज कर रहे थे अल्लाह ताला? हाँ, इंट्यूशन, इल्हाम। ठीक है, इंट्यूशन जिसको अरबी में और उर्दू में इल्हाम कहा जाता है। ठीक है, तो गाइडेंस का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल कर सकते इसके लिए, गाइडेंस ही के ये तीन तरीके हैं ना, गाइडेंस के ये तीन तरीके हैं कि एंजल के जरिए से या ड्रीम्स के जरिए से या इल्हाम के जरिए से। अच्छा, तकदीर मुबरम और तकदीर मुअल्लक, ये कुछ समझ में आया था? बिकॉज मैं खुद जानता हूँ कि बहुत बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है और मे बी आई आई डिड नॉट एक्सप्लेन इट इन द बेस्ट ऑफ द वेज, आई डू एक्नॉलेज दैट, ठीक है, तो आप बताएं कोई तकदीर मुबरम क्या होती है और तकदीर मुअल्लक क्या होती है, अपने अपने वर्ड्स में बताएं। किसी के पास व्हाट्सएप है तो वहां से कट पेस्ट ना करें, बल्कि अपने वर्ड्स में समझाएं। या मुअल्लक का मतलब क्या होता है? सस्पेंडेड, ठीक है, सस्पेंडेड, लटकी हुई, ठीक है, इसको उर्दू में कहेंगे लटकी हुई। अच्छा, अनस भाई कह रहे हैं कि अल्लाह की नॉलेज जो चेंज ना होगी ये मुबरम है। हाँ, जो चेंज नहीं होती अल्लाह की नॉलेज है ये मुबरम है, ठीक है। और अल्लाह की नॉलेज जो है वो हर चीज को कवर करती है, जो पास्ट में हो गया, जो प्रेजेंट में हो रहा है और जो फ्यूचर में होगा, ठीक है। अब जो फ्यूचर में होगा, ठीक है, तो इसके अंदर ये भी तो शामिल है ना कि किसने तौबा करनी है, किसने तौबा नहीं करनी है, ये भी तो फ्यूचर ही की बात है ना। किसने नेकी करनी है, किसने गुनाह करना है, ये भी तो फ्यूचर ही की बात है ना, ठीक है। किसने दुआ मांगनी है, किसने दुआ नहीं मांगनी है, ये भी तो फ्यूचर के अंदर है ना, ठीक है। तो एवरीथिंग देयर इज इन द फ्यूचर, ये सब कुछ तकदीर मुबरम के अंदर मौजूद है, यानी अल्लाह ताला की नॉलेज में सब कुछ मौजूद है। तकदीर मुअल्लक फिर क्या बनी? तकदीर मुअल्लक डिपेंड्स ऑन आवर आमाल, ठीक है। जैसे इन्होंने जवाब दिया यहाँ पर गर्ल्स में और बॉयज में जवाब दिया इन्होंने कि तकदीर मुअल्लक जो चेंज हो सकती है, ठीक है, यानी दिस इज लाइक अनदर रजिस्टर जो कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर भी आगे की चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अल्लाह की नॉलेज है भाई, अल्लाह ताला ने उसके अंदर कुछ एक सोर्ट ऑफ, हम कहते हैं ना प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, एक प्लान ऑफ एक्शन लिखा हुआ है। लेकिन ये प्लान जो लिखा हुआ है, जैसे हम बैठ करके कभी कोई प्लान बनाते हैं ना कि हमने जी पिकनिक पे जाना है, तो हम पिकनिक के ऊपर जो है वो कौन सी बस हायर करेंगे, ठीक है, कितने लोग उस बस के अंदर आ सकते हैं और हमने कहाँ पे रुक करके जो है वो अपने पानी खरीदना है, कहाँ पे रुक करके हमने बर्फ खरीदनी है, फिर कहाँ किस रास्ते से हमने पिकनिक पे जाना है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हम एक प्लान में लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्लान जो है वो चेंज भी हो सकता है कि भाई रास्ते में जो है वो किसी क्या पता लगा कि आगे सड़क जो थी वो खराब थी, तो आपने इस सड़क को छोड़ करके जो है वो दूसरे सड़क पे बस को चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो प्लान तो आपने पहले से बनाया हुआ था, लेकिन ये प्लान जो है वो किसी वजह से चेंज भी हो सकता है, ठीक है। बस ड्राइवर जो है उसको किसी का फोन आ गया, ठीक है, कि जी मुझे जो है ना आप पिकनिक पे जाने के लिए दूसरी जगह से आके पिक कर लें। तो बस ड्राइवर ने कहा अच्छा ठीक है जी, हम आपको ना पिक कर लेते हैं। तो फिर बस ड्राइवर ने दूसरे रास्ते के ऊपर बस डाल दी, ठीक है, ताकि वो जो जिन साहब ने फोन किया था पिक करने के लिए तो उनको पिक भी कर लें, ठीक है। तो जिस वक्त आपने प्लान ऑफ एक्शन बनाया था, उस प्लान ऑफ एक्शन के अंदर ये सारी बातें आपने नहीं लिखी थी ना, ठीक है। तो ये जो चेंजेस है ना, ये चेंजेस हो सकती हैं फ्यूचर में। तो ये जो चेंजेबल प्लान है अल्लाह ताला का, इसको तकदीर मुअल्लक कहते हैं, ठीक है। कि जैसे किसी ने दुआ मांगनी थी, ठीक है, अब दुआ जो मांगी उसने, तो दुआ मांगने से जो है वो अल्लाह ताला ने तकदीर मुअल्लक के जो रजिस्टर था ना, उस रजिस्टर में चेंज कर दिया मामला, ठीक है। और इसी तरह से नेक अमाल किए तो कोई अच्छा काम हो गया और बुरे अमाल किए तो बुरा अमाल हो गया, ठीक है। आई समवॉट डोंट टोटली अंडरस्टैंड अबाउट तकदीर मुबरम एंड मुअल्लक। फॉर एग्जाम्पल, इन तकदीर मुअल्लक द थिंग कैन चेंज, सो डजंट दैट मेक इट लाइक अल्लाह डजंट टोटली नो। नहीं ना, तकदीर मुअल्लक में इन्होंने प्राइवेटली सवाल किया है तो इस वजह से इनका नाम नहीं बताते कि इन्होंने सवाल किया है। जो पूछ रहे हैं कि जी तकदीर मुअल्लक के अंदर समथिंग कैन चेंज, ठीक है भाई, तकदीर मुअल्लक के अंदर समथिंग कैन चेंज जो है ना, तो इसकी वजह से ये तो नहीं मतलब है इसका कि अल्लाह ताला को मालूम नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला को मालूम है, ठीक है, मालूम है, क्योंकि तकदीर मुबरम जो है वो एक अलग तकदीर है ना, वो एक अलग रजिस्टर है, ठीक है। तकदीर मुअल्लक जो है वो एक अलग रजिस्टर है। ये आपको इंशाल्लाह थोड़ा सा, यानी थोड़े से आप और बड़े होंगे ना, तो उस वक्त ये ज्यादा आसानी से समझ में भी आ जाएगी बात, ठीक है। क्योंकि जो हमारी एक एक चीज होती है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हाउ मच वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, तो ये भी जो होती है ना एज के साथ चेंज भी होती है, ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एज के साथ चेंज होती है, बढ़ती है. हाउ डज इट एक्सपैंड, हाउ डज इट इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग, हाउ डज इट इंक्रीज, बिकॉज जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ना, तो वैसे वैसे हमें नॉलेज ज्यादा हासिल होती है, ठीक है, हमें आप जाहिर है आज आपने जितनी चीजों को दुनिया में देखा है, ठीक है, आज से एक साल के बाद आप उससे ज्यादा चीजें देख चुके होंगे, ठीक है ना, आज से एक साल का जो टाइम अब गुजरेगा, उस एक साल में आप हो सकता है किसी दूसरे कंट्री का ट्रैवल करें, किसी दूसरे सिटी का ट्रैवल करें, जब आप कहीं ट्रैवल करेंगे तो अब आपको नई चीजें नजर आएंगी ना, ठीक है, आप जो है कुछ एडिशनल बुक्स पढ़ लेंगे, ठीक है, जो आपने आज तक नहीं पढ़ी है, तो जब आप कुछ एडिशनल बुक्स पढ़ लेंगे तो आपको ऐसी चीजें मालूम होंगी जो कि आपको आज नहीं मालूम है, ठीक है, फिर आप कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, तो उनसे जो बातचीत करेंगे तो उनसे बातचीत करके आपको कुछ चीजें मालूम होंगी, उन लोगों के बारे में मालूम होंगी, वो आपको कोई कोई और बातें बताएंगे जो उन्होंने देखा था दुनिया के अंदर, या उन्होंने जो किताबें पढ़ी है वो आपको बताएंगे, तो ये सारी चीजें आपके नॉलेज में इंक्रीज, ठीक है ना, एडिशन करेंगे ना, तो जैसे जैसे नॉलेज के अंदर एडिशन होती है, वैसे वैसे जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो बढ़ती है, हमारी समझ और हमारी जो अकल है उसके अंदर इंक्रीज होता है, तो जब अकल में इंक्रीज होती है ना, जब अकल बढ़ती है, तो जो बातें हमें एक साल पहले समझ में नहीं आती थी, वो बातें हमें एक साल के बाद ज्यादा समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना, इसका इसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बढ़ गया होता है, ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट भी है कि अगर कोई बात बार बार समझाने के बावजूद समझ में नहीं आ रही है ना, तो उसकी एक रीजन ये भी होती है कि भाई हमारी एज अभी छोटी है, हमने इतना ज्यादा जो है वो दुनिया नहीं देखी है, या इतने ज्यादा लोगों से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, इतनी ज्यादा बुक्स हमने पढ़ी नहीं है, तो इस वजह से जो है वो हमें बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएगी समझ में, कोई इतनी ज्यादा मुश्किल बात भी नहीं है, अलबत्ता आप कोई खास स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे कैसे होता है, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम उसको आपको समझाने की दोबारा कोशिश कर लें, ठीक है, एग्जाम्पल भी दी थी ना, कि एक स्कूल की एग्जाम्पल दी थी कि जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, तो उन्होंने जो है वो एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया है, लेकिन उन्होंने ये भी रखा है कि जी अगर यानी उन्होंने ये रखा है ना कि जी मैं इस डेट को जो है वो एग्जाम रखूंगा और इस डेट को जो है मैं रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा, ठीक है, ये सब उन्होंने उन्होंने प्लान बना दिया, लेकिन अगर कोई बच्चा आकर के मुझसे सवाल करेगा, मुझसे रिक्वेस्ट करेगा कि जी एग्जाम जो है वो आप डिले कर दें, तो मैं उसकी बात को मान लूंगा और मैं उस एग्जाम को एक हफ्ता डिले कर दूंगा, तो ये सब चीजें उन्होंने लिखी हुई हैं, लेकिन उनको ये बात भी मालूम है कि मैंने डिले भी कर देना है, ठीक है, तो यही बस फर्क है तकदीरें मुतलक और तकदीरें तकदीरें मुबरम और तकदीरें मुअल्लक के दरमियान, ठीक है, और ये समझाना जरूरी क्यों था, भाई क्यों इतना मैंने टाइम लगा करके आप लोगों को ये बात समझाई है, इसका किसी को जवाब पता है, क्यों समझाई है बात, वजह क्या बनी, इतना टाइम क्यों लगाया इसके ऊपर, बट इज़न्ट अल्लाह श्योर दैट द किड कुड कम और नॉट, अल्लाह सुब्हान व तआला इज एब्सोल्युटली श्योर दैट द किड कुड कम और नॉट, ये कुड कम वाला तो मसला में आपका सवाल समझ में नहीं आया कि कुड कम का मतलब क्या, ओ अच्छा ये आप जो स्कूल वाली वाली एग्जाम्पल दी है टू द प्रिंसिपल, अल्लाह ताला इज श्योर, ठीक है, अल्लाह ताला इज एब्सोल्युटली श्योर, लेकिन क्योंकि मैं आपको जानता हूँ ना, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आई नो हाउ ओल्ड यू आर, ठीक है ना, एंड आई हैव अ प्रीटी गुड आइडिया हाउ मतलब हाउ एक्सपोज्ड यू आर, ठीक है, टू द वर्ल्ड, ठीक है, तो इस वजह से आई नो कि ये जो बात है ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है, एंड वाई आई एम स्टिल एक्सप्लेनिंग इट, बिकॉज इस क्लास के अंदर आपसे ओल्डर लोग भी हैं, ठीक है, 15 ईयर्स के लोग भी हैं और 20 ईयर्स के लोग भी हैं, तो उनको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी बात, ठीक है, तो उस वजह से आपको जो है ना अभी थोड़ा सा सबर करना पड़ेगा इसको समझने के लिए, सही है। अच्छा, तो किसी को इस बात का जवाब पता है कि जी हमने ये सारी एक बात एक्सप्लेन करी क्यों है 15-year-old वालों को और 20-year-old वालों को, क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं हम ये सारी बातें? इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, बड़े लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई व्हाई द रीजन, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दिस इन द फर्स्ट प्लेस। इसकी रीजन समझाई थी वैसे पिछली क्लास में, बताई थी आपको, किसी को याद है? एक कंफ्यूजन को एड्रेस करने के लिए ना, वो कंफ्यूजन क्या थी? कॉन्ट्रडिक्शन फॉर क्लियरिंग एनी मिसकंसेप्शंस, एनी सही वही मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट मिसकंसेप्शन, ठीक है, कौन सी मिसकंसेप्शन होती है जिसको के बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड व्हेन वी बिकम बिगर। हाँ, आपके लिए तो ये बात बिल्कुल ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको थोड़ा सा अभी एक फ्लेवर मिल गया ना इस बात का, तो जब आप बड़े होंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा इस बात को समझना। तो आपके लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन जो बड़े हैं बच्चे, तो उनको लिए ये वाली बात सही नहीं होगी, बल्कि उनको मैंने बताया था कि टू अंडरस्टैंड विच मिसकंसेप्शन या विच मिसअंडरस्टैंडिंग। कॉन्ट्रडिक्शन वाली एक बात बताई थी ना आपको, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होती है? दो बातें आपस में मैच नहीं कर रही होती हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई दूसरा बंदा जो है वो कुछ डिफरेंट बात कर रहा है, तो इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम सोचते हैं कि भाई कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है, या दोनों ही गलत कह रहे हैं या दोनों ही सही कह रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। दो आदमी है आपके पास, ठीक है, दोनों जो है वो आपके लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, ठीक है ना। एक फॉर एग्जाम्पल आपकी अम्मी है, एक आपके अब्बू हैं, ठीक है ना, दोनों की आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, अम्मी अब्बू दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो अम्मी जो है वो कह रही है कि जी कल जो है ना कल जो है वो आपके नाना अब्बू आए थे, ठीक है, और अब्बू जो है वो कह रहे हैं कि नहीं कल जो है वो नाना अब्बू नहीं आए थे, ठीक है। तो अब कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, अम्मी गलत कह रही हैं कि अब्बू गलत कह रहे हैं, बिकॉज दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या दोनों गलत बात कर रहे हैं या दोनों सही बात कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रही बात, ठीक है। तो भाई कॉन्ट्रडिक्शन है ना इन दोनों के अंदर। अब या तो आप अम्मी को गलत कहेंगे या आप अब्बू को गलत कहेंगे, तो जिसको भी गलत कहेंगे तो ये उनकी बेअदबी हो जाएगी, ठीक है ना। आप कहें अम्मी गलत कह रही है तो ये आपने अम्मी की बेअदबी कह दी, आप कहें नहीं अब्बू गलत कह रहे हैं तो अब्बू की बेअदबी हो गई, ठीक है, या आप कहें दोनों ही गलत कह रहे हैं, ठीक है, तो वे दोनों की बेअदबी हो गई, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो नजर आती है ना, तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को हमें एक्सप्लेन करना होता है ना, इस वजह से बात सारी आपको समझाई है। तो क्या अल्लाह ताला पहले से नहीं जानते थे कि वो बच्चा बड़े होकर तौबा नहीं करेगा? अल्लाह ताला पहले से जानते थे, अल्लाह ताला के जानने का मसला कोई थोड़ी है, अल्लाह ताला के इल्म में तो सब कुछ है ना, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, कौन तौबा करेगा कौन तौबा नहीं करेगा, सब कुछ है ना, ठीक है। अच्छा, तो भाई क्यों बताई थी आपको ये बात, तकदीर मुबरम और तकदीर मुअल्लक की जो डिफरेंस है वो क्यों बताया था? देखें, यू नो व्हाई वी नीड टू डू सो मेनी थिंग्स व्हेन अल्लाह नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू अस। हाँ, यही तो बात है, ठीक है। Why do we need to do so many things when Allah knows what is going to happen to us? अच्छा, तो पहली तो इस सवाल का जवाब देना, because we start assuming things. नहीं, आप लोगों को ये बात इसलिए समझाई थी, ठीक है, contradiction को समझने के लिए, ठीक है, contradiction को समझने के लिए, okay? के कॉन्ट्रडिक्शन, वो क्या कॉन्ट्रडिक्शन थी, वो ये थी कि हमें कुरान से ये पता लगता है ना कि अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं, ठीक है, एवरीथिंग इन द फ्यूचर एंड नहीं, कुरान से एक तो ये पता लगता है कि अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता लगता है ना कि सब कुछ जो है वो कुरान और हदीस से हमें पता लगता है कि जो कुछ हमें रिस्क मिलता है, ठीक है, रिस्क सस्टेनेंस, ठीक है, जो हमें खाना पीना मिलता है या हमें पैसे मिलते हैं, ये सब कुछ जो है वो फिक्स है, ठीक है, सब कुछ जो है वो फिक्स है, ओके, तो ये बात हमें पता लगती है कि सस्टेनेंस और रिस्क इज ऑलरेडी डिटरमिन्ड एंड ऑलरेडी फिक्स्ड, ठीक है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसों से हमें क्या पता लगता है कि जब इंसान नेक अमल करता है तो उसका रिस्क बढ़ा दिया जाता है, और जब इंसान बुरा काम करता है तो उसका रिस्क कम कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई कि हमें कुरान और हदीस में डिफरेंट प्लेसेस से ये पता लगता है, यानी सिर्फ ये नहीं कि कुरान से पता लगता है और हदीस से कोई और बात पता लगती है, नहीं, बल्कि ओवरऑल जब हम कुरान और हदीस को स्टडी करते हैं तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता लगता है कि रिस्क जो है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। और कुछ हदीसें हम पढ़ते हैं उससे हमें ये पता लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये भी फरमाया कि जब नेकी का काम करते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है और बुराई का काम करते हैं तो रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना रिस्क के बारे में, तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि पढ़ने वाला ये समझेगा कि या तो ये हदीस गलत है कि जिसमें कहा गया है कि रिस्क जो है वो फिक्स है, या ये कि वो हदीस गलत है कि जिसमें कहा गया है कि रिस्क चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यही समझेगा ना कि भाई या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गलत बात कही और कभी जो है वो सही बात कही, नाऊज़ बिल्लाह, कभी गलत बात करी नाऊज़ बिल्लाह और कभी सही बात करी, ठीक है, कभी कुछ कहते थे कभी कुछ कहते थे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बेअदबी कर रहे होंगे, और दूसरी क्या बात होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर अल्लाह के मैसेंजर है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी का मतलब खाली ये कोई थोड़ी है कि जैसे हमने अपने बड़े भाई की बेअदबी कर दी, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी तो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है ना, अल्लाह ताला को जो है वो गुस्सा आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी के ऊपर। तो अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी करेंगे तो फिर तो शायद हमारा ईमान ही खत्म हो जाए, ठीक है, हम तो मुसलमान ही नहीं रहेंगे उसके बाद, ठीक है ना। तो इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है कि भाई ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि असल में इस तरह से होता है कि अल्लाह ताला ने दो रजिस्टर्स बनाए हैं, एक रजिस्टर के अंदर जो है वो फ्यूचर की भी बातें सारी लिखी हुई हैं और दूसरे रजिस्टर के अंदर जो है वो फ्यूचर की बातें नहीं लिखी हुई हैं, ठीक है। तो तकदीर मुअल्लक के अंदर जो रिस्क लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने, वो रिस्क जो है वो हमारी दुआ से और नेक अमाल से बढ़ जाता है, और अगर हम बुरा काम करें तो वो चेंज वो कम हो जाता है। लेकिन तकदीर मुबरम के अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं होती, बल्कि तकदीर मुबरम के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि इस शख्स ने दुआ करनी है और इस शख्स ने दुआ यानी नेक अमल करना है, ठीक है, ये सब कुछ भी तकदीर मुबरम के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह ताला की नॉलेज के अंदर सब कुछ मौजूद है, लेकिन तकदीर मुअल्लक अल्लाह ताला ने ना एक छोटे लेवल का एक रजिस्टर बनाया है जिसके अंदर ये सारी तफसीलात जो है वो ऐसे नहीं लिखी हुई हैं जैसे कि तकदीर मुबरम के अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रडिक्शन आपके जहन के अंदर पैदा हो जाए और फिर इसकी वजह से आप बेअदबी करना शुरू हो जाएं, तो इससे बचाने के लिए हमने ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको दी है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे ऑथेंटिक और अनऑथेंटिक हदीस की बात नहीं हो रही, ठीक है, हम यहाँ पर दो ऑथेंटिक हदीसों ही की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही ऑथेंटिक हदीस हैं कि जिस एक हदीस में जिसमें बताया गया है कि रिस्क चेंज नहीं होता, ये भी ऑथेंटिक हदीस है, और जिसमें बताया गया है कि रिस्क चेंज हो जाता है, ये भी ऑथेंटिक हदीस है, ठीक है। तो ऑथेंटिसिटी का डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, वरना तो फिर मसला ही कोई नहीं होता ना, आप कह देते कि भाई जिस हदीस में ये बता रहे हैं कि रिस्क चेंज हो जाता है वो तो ऑथेंटिक ही नहीं है, तो इस वजह से उस हदीस को इग्नोर कर दिया जाए, और जिसके अंदर ये है कि रिस्क चेंज नहीं होता वो ऑथेंटिक है तो उस हदीस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये तो कोई मसला ही नहीं हुआ ना, ये तो बहुत ही आसान हो गया फिर। नहीं, मसला ये है कि दोनों ही ऑथेंटिक हदीस हैं, ठीक है, तो अब आप दोनों में से किसी एक को छोड़ करके दूसरे को थोड़ी दे सकते हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा ना इसके अंदर, ठीक है। तो इस वजह से ये जो बच्चे वाला मसला था ना, तो इसके अंदर भी क्योंकि इस तरह की ही बात आती है कि भाई वो जो बच्चा था तो उस बच्चे ने आगे जा करके ऐसे करना था और वैसे करना था, तो इस वजह से जो है वो अल्लाह ताला ने खजर अलैहिस्सलाम को कहा कि जी आप इसको जो है वो मार दें, ठीक है ना। तो अब ये इस पे ये यही क्वेश्चन होता है कि क्या अल्लाह ताला को मालूम था कि आगे जा करके उसने ये ऐसे करना है, तो फिर अल्लाह ताला ने फिर ऐसा किया ही क्यों, कि उसको पैदा ही क्यों किया और फिर उसके मारने की नौबत ही क्यों आई वगैरह, ठीक है। तो यही ये जो है ना, ये सारा तकदीर मुबरम और तकदीर मुअल्लक का मामला है, ठीक है। तो इस बच्चे को जो मारने का फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो डिसीशन आया था, ठीक है, जो कि खजर अलैहिस्सलाम को बताया अल्लाह ताला कि जा करके आप इसको मार दें, तो वो क्यों ऐसा किया अल्लाह ताला ने, क्योंकि दुआ की बेसिस के ऊपर, ठीक है। दुआ, खजर अलैहिस्सलाम ने दुआ करी कि भाई ये इतने अच्छे नेक लोग हैं और इनका जो बेटा है ना ये बहुत बुरे बुरे काम कर रहा है, तो हमें तो लगता है कि ये आगे जा करके अपने माँ बाप के लिए कोई तकलीफ का सबब बन जाएगा। तो खजर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ करी, तो अल्लाह ताला ने इस बेटे के मौत का फैसला कर लिया, ठीक है। और दूसरी क्या थी एक्सप्लेनेशन, के खजर अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं करी बल्कि इसके पेरेंट्स ने ही दुआ करी कि ए अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह हमें नेक साले औलाद अता फरमा। तो इन्होंने चूंकि ये दुआ करी थी तो अल्लाह ताला ने इनकी दुआ को कबूल कर लिया और इनका जो ये बेटा बुराई के रास्ते के ऊपर चल पड़ा था, ठीक है, और ये जो है वो इनके ईमान के ज़ाया होने का सबब बन सकता था, तो अल्लाह ताला ने फिर इसके मौत का फैसला कर लिया कि इसको जो है मैं अपने पास वापस बुला लेता हूँ और इसकी जगह जो है मैं किसी और को इनका इनकी औलाद बना के भेज देता हूँ जो कि नेक होगा और इनके ईमान के सलामती का सबब बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस जो अल्लाह ताला ने करी हैं, ये चेंजेस हम कहेंगे तकदीर मुअल्लक के अंदर करी हैं, ठीक है। तकदीर मुअल्लक के अंदर ये सारी चेंजेस करी हैं अल्लाह ताला ने, ठीक है, इनकी दुआ की बेसिस के ऊपर। लेकिन जो तकदीर मुबरम थी, उस तकदीर मुबरम के अंदर तो अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम था कि ये लड़का जो है इसने इस दिन इस टाइम पर खिजर अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल हो जाना है, ठीक है ना। ये बात अल्लाह ताला को पहले से पता थी क्योंकि ये अल्लाह ताला की नॉलेज है, ठीक है। अल्लाह ताला की नॉलेज फ्यूचर को कवर करती है, ठीक है, एंड इट्स नॉट मुअल्लक। अल्लाह की नॉलेज इज नॉट मुअल्लक और सस्पेंडेड, लटकी हुई नहीं अल्लाह की नॉलेज। अल्लाह ताला की नॉलेज है वो पहले से यानी एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट, ठीक है। अब जाहिर है 10 years के अगर आप हैं तो आपको ये एब्सोल्यूट का मतलब समझ में अभी नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप 16 years के हैं, आप हाई स्कूल में जो है वो ए लेवल्स करने वाले हैं या कर चुके हैं, ठीक है, तो अब यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ द वर्ड एब्सोल्यूट इज, ठीक है। 9 years में आपको एब्सोल्यूट का मतलब नहीं पता ना, लेकिन 10 years 16 years में जाके एब्सोल्यूट का मतलब पता चल जाता है ना। तो इस वजह से जो 10th grade वाले हैं या ए लेवल्स वाले हैं तो उनको ये बात समझ में आएगी कि वो कि ये एब्सोल्यूट नॉलेज है जो तकदीर मुबरम है, और दूसरी जो है वो एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आखिरी जो चीज़ थी वो ये थी कि इन रिस्पॉन्स टू ए स्टूडेंट्स क्वेश्चन अबाउट मज़ूब्स द कॉन्सेप्ट वाज़ एक्सप्लेन्ड यूजिंग एग्जांपल ऑफ ए कंट्रीज मिलिट्री एंड इट्स सिविलियन वर्कफोर्स, ठीक है, कि मज़ूब क्या चीज़ होती है और अल्लाह ताला के जो मुख्तलिफ बंदे होते हैं तो उनमें अल्लाह ताला ने दो कैटेगरीज बनाई हैं, इंसानों में भी दो कैटेगरीज बनाई हैं। एक कैटेगरी उन इंसानों की है कि जो कि अल्लाह ताला की शरीयत के पाबंद होते हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला उनके ज़रिए से जो है वो तशरीह काम लेते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं कि जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला तकवीनी काम लेते हैं, जैसे एंजल्स से तकवीनी काम लेते हैं ना, उसी तरीके से इन इंसानों से भी तकवीनी काम लेते हैं, और खिज़र अलैहिस्सलाम वाज वन ऑफ दोस पीपल, ठीक है, तकवीनी काम वाले। खिज़र अलैहिस्सलाम के अलावा एक और भी प्रॉफिट इस तरह का काम करते थे, ठीक है, उनका नाम है हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, ठीक है। हिदायत मिलना किस तकदीर में लिखा होता है, हिदायत मिलना जो है किस तकदीर में, अब ये नहीं है कि जी इसमें लिखा हुआ है और उसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये तकदीर मुबरम के अंदर ये लिखा होगा। अगर आपका जवाब आपके सवाल का स्ट्रेट आंसर दिया जाए तो ये होगा कि तकदीर मुबरम के अंदर ये बात लिखी हुई है कि किसको हिदायत मिलनी है और किसको हिदायत नहीं मिलनी है, یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو ہدایت ملنی ہے اور کس کو ہدایت نہیں ملنی ہے. ٹھیک ہے بھائی, ایک اور بھی نا آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اور بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم یار کبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فیوچر کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ بھائی فیوچر کے بارے میں میں کیا کرنے والا ہوں کیا نہیں کرنے والا ہوں, دس شوڈ بی سم تھنگ دیٹس پرسنلی مائن. ٹھیک ہے, اٹ شوڈ بی اونلی می ہو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیٹرمن کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی اور یہ فیصلہ نہ کرے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, یا کسی اور کو پتا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے بھائی, یہ بات ٹھیک ہے, یہ اچھی, یہ جو آپ کی خواہش ہے نا کہ کسی کو پتا نہیں ہونا چاہیے اور کسی کو جو ہے نا وہ فورس نہیں کرنا چاہیے کہ میں کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا, یہ بات ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں ہم کہ بھائی آپ کی یہ خواہش ہے, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے آپ کی خواہش ہے, فائن. لیکن وائی ڈو وی وانٹ کہ جو ہمارا کریئٹر ہے, جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے, جس نے کہ نہ صرف ہمیں بنایا بلکہ پوری کائنات کو اس نے بنایا, ٹھیک ہے, اور جو کہ ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ پالتا بھی ہے, ٹھیک ہے, وائی ڈو وی وانٹ ہم ٹو آلسو ناٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ وائی ڈو وی وانٹ آور کریئٹر ٹو آلسو ناٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ ٹھیک ہے, ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ فیوچر کا معلوم نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو کہ جن کی نالج جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. وائی ڈو وی وانٹ دیٹ فرام اللہ, اور وائی ڈو وی وانٹ دیٹ فار اللہ؟ ٹھیک ہے, یہ تو غلط بات ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ بھائی اللہ کو بھی نہیں پتا ہونا چاہیے فیوچر میں کیا ہے, گویا کہ اللہ بھی جو ہے نا وہ نعوذ باللہ اگنورنٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اگنورنٹ ہونا چاہیے, ان کو صرف پاسٹ کا پتا ہونا چاہیے, وی ایکسیپٹ دیٹ, ان کو صرف پریزنٹ کا پتا ہونا چاہیے, دیٹ از آلسو ایکسیپٹیبل ٹو اس, بٹ اللہ کو فیوچر کا بھی پتا ہو, نو 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 نو, دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو می. ٹھیک ہے نا, دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو می. تو یہی ہو گیا نا کہ بھائی اللہ کو اگر پتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کہ کس نے نیک کام کرنا ہے کس نے نہیں نیک کام کرنا, تو پھر تو میں کچھ کروں گا ہی نہیں, مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ایک لطیفہ یاد آیا کہ کسی نے کہا تھا کہ جی کسی نے نا کسی دوسرے کو نصیحت کری کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے, آپ کو نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے, آپ کو نماز پڑھنی چاہیے. تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں نماز پڑھنا شروع ہو جاؤں. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ مجھے نماز پڑھنے کی جو تلقین کر رہے ہیں تو میں کل سے نماز پڑھنا شروع ہو جاؤں گا, یہ انہوں نے نہیں کہا, بلکہ انہوں نے کہا آپ میرے لیے دعا کر دیں, ٹھیک ہے, کہ میں نماز پڑھنا شروع ہو جاؤں. تو جو نصیحت کرنے والے تھے نا انہوں نے جواب دیا کہ آپ کل سے جاب پر بھی نہیں جائیے گا. ٹھیک ہے, آپ کل سے جاب پر بھی نہیں جائیے گا, میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے کھانا پہنچا دیں, گھر بیٹھے آپ کو سیلری مل جائے جاب پہ جائے بغیر. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے وہ راضی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, کہ نہیں اچھا ٹھیک ہے آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, کل سے میں جاب پر بھی نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے, میں جو ہوں جس طرح آپ کو میں نماز کے لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ میری نماز کے لیے دعا کر دیجیے گا, تو اسی طریقے سے آپ میری جاب کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا کہ میری جاب بھی لگی رہے اور مجھے سیلری بھی ملتی رہے اور مجھے کھانا بھی ملتا رہے, تو آپ میری جاب کے لیے بھی دعا کر دیے گا. اس پر وہ تیار نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, تو بھائی کیوں تیار نہیں ہوئے؟ کیا نماز کے لیے تو ہم آپ دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور سیلری کے لیے جو ہے وہ آپ دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, دعا کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اصل میں یہی ہوتا ہے کہ جو ہم نیک کام نہیں کرنا چاہتے ہیں نا کہ بھائی کیا ضرورت ہے, جب اللہ کو سب کچھ پتا ہے تو پھر نیک کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور کیا ضرورت ہے کہ اللہ کو جب سب کچھ پتا ہے تو پھر گناہ سے بچنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو ہوتی ہے نا اصل میں نا ہم سیلف کانٹرڈکٹری بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اصل میں ہمیں پرابلم اس سے نہیں ہوتا کہ اللہ کو کیوں پتا ہے ساری باتیں, بلکہ ہمیں اس بات کا پرابلم ہوتا ہے کہ یار میں کیوں کروں, اچھا کام کیوں کروں, اور کیوں میں جو ہوں نا وہ برے کام سے بچوں. تو اس کے لیے نا اصل میں ہم صرف بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے اس وجہ سے میں نیک کام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, یہ صرف بہانے ہوتے ہیں, और ये सच नहीं होता है, असल में हम झूठ बोल रहे होते हैं और अपने आप को डिनाई कर, अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो किसी को और कोई सवाल है इस टॉपिक के ऊपर? समरी भी हमारी मुकम्मल हो गई, इसी में तकरीबन सारी हमारी क्लास निकल गई। लेकिन क्योंकि हमारी जो क्लास है वो सिर्फ सूरह कहफ को तो ख़त्म करने वाली क्लास नहीं है ना, बल्कि इसके अंदर दीन के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, अकीदा और अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग, ठीक है, ये हमारी इस क्लास का मकसद है कि आपकी जो थिंकिंग जो है वो सही हो जाए और अकीदा और अंडरस्टैंडिंग जो है वो सही रहे। दिस इज़ आवर गोल। तो अगर कोई और सवाल नहीं है किसी को, तो हम सूरह कहफ के अंदर आगे भी बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि अल्लाह ताला फिर अगली आयात जो आयात नंबर 83-88 है, पेज नंबर 646 के ऊपर, अगर आप इसे कोई टाइप कर दें इधर 646 पेज पर, आयात 83-88 ये हम शुरू करते हैं। अल्लाह ताला इसमें इरशाद फरमाते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयसअलूनका अन दिल करनैन, के दे एस्क यू अबाउट दुल करनैन, कुल कह दीजिए, सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, आई शैल नाउ रिसाइट टू यू सम नरेशन अबाउट हिम। ठीक है, तो ये पहली आयत खाली अभी हमने पढ़ी है, इसके ऊपर सारी बात करते हैं कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं इसमें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग आपसे सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं ज़ुल्करनैन के बारे में, आप इनसे कह दीजिए कि मैं अब तुम्हें बताता हूँ उनके जिक्र में से थोड़ा, यानी उनके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड क्या है कि आपको याद होगा कि ये जो सूरह कहफ के जो नुजूल था, जो अल्लाह ताला ने सूरह कहफ नाजिल फरमाई है, तो इसका पसे मंजर या बैकग्राउंड क्या था, वो ये था कि जो यानी ये उस जमाने की बात है जब नबी अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में रहते थे। ठीक है, तो मक्का मुकरमा में आप के ऊपर बहुत सारे लोग मुसलमान ईमान ले आए थे, मुसलमान हो गए थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा लोग मुसलमान नहीं हुए थे, यानी बहुत सारे लोग मुसलमान नहीं हुए थे और वो आपसे असलम के दुश्मन बन गए थे। ठीक है, तो ये वही लोग थे जो कि आपसे असलम के फैमिली वाले लोग थे, आपसे असलम के नेबर्स थे। ठीक है ना, ओवरऑल जो आपसे असलम का ट्राइब था उस ट्राइब के ही मेंबर्स थे, कुरैश। ठीक है, तो ये लोग जो है वो आपसे असलम के दुश्मन बन गए थे, क्योंकि आपसे असलम ने इन लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि तुम जिन बुतों की परस्तिश कर रहे हो ये असल में खुदा नहीं है, तुम हकीकी खुदा अल्लाह ताला को वर्शिप किया करो, और तुम बुरे अमाल से जो तुम करते हो ना उनसे बचा करो, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे मरने के बाद तुमको दोबारा जिंदा करेगा और तुम्हारे सारे अमाल का हिसाब लेगा तुमसे। ठीक है ना, अब ये जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कहनी शुरू करी तो बहुत सारे लोग इससे ऑफेंडेड हो गए, ऑफेंडेड, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एज में भी बड़े थे और वो लोग जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अमीर भी थे और बहुत ज्यादा यानी अपने आप को समझते थे कोई कोई चीज, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें करी तो वो ऑफेंडेड हो गए और गुस्सा होना शुरू हो गए। तो उन लोगों ने ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ना किसी तरीके से तकलीफ पहुंचानी शुरू करी, कभी मारते थे, कभी जो है वो जुबान से बहुत बुरी बुरी बातें कहते थे। ठीक है, और उनमें से कुछ ने ये भी ट्राई किया कि किसी तरीके से ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम फॉल्सिफाई करें, फॉल्सिफाई यानी झूठा साबित कर दें कि ये जो बातें कह रहे हैं ये सब बातें जो है ना बस ये झूठी बोल रहे हैं, ये इनको जो कुरान की आयत वगैरह ऐसी मिलती है ना जिनमें बड़ी जबरदस्त किस्म की अरबिक होती है जो कि हमें भी बड़ी अच्छी लगती है अरबी, तो ये सारी बातें ना ये जादू के जरिए से करते हैं। ठीक है, ही इज कनेक्टेड टू सम जिन्स, और जिन आकर के इनको इस तरह की बातें बताते रहते हैं जो ये हमें आगे से बताते हैं, तो इनका कोई अल्लाह से ताल्लुक नहीं है, अल्लाह के मैसेंजर ये नहीं है, ये सब झूठ झूठ और गलत गलत बातें कर रहे हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि ये लोग इनमें से कुछ लोग जो है ना मदीना मुनव्वरा गए और वहां पे जो ज्यूज रहते थे यहूदी, तो यहूदी जो थे इनको पता था कि यहूदी जो है ना वो उस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं कि जिस फैमिली में अल्लाह के मैसेंजर्स आए हैं, बनी इसराइल वाली फैमिली। ठीक है, तो इन यहूदियों को अल्लाह के मैसेंजर्स ने क्या बातें बताई थी इनको पता है। ठीक है ना, इनके पास टोरा भी है, तौरात जिसको कहते हैं, تورا بھی ہے، ان کے پاس انجیل بھی ہے، اور ان کے پاس ان ساری چیزوں کا نالج کی نالج ہے. تو ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میسنجرز کے ذریعے سے کیا باتیں بتائی تھیں. تو ہم ان سے جا کر کے کچھ ایسی چیزیں سیکھ کر کے آتے ہیں کہ جو ہم نا ان سے یعنی کسی یعنی ہم ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جھوٹا ثابت کر سکیں ان باتوں سے. تو جب یہ لوگ گئے ان یہودیوں کے پاس تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ ایسا ایسا ایک بندہ ہمارے درمیان کھڑا ہو گیا ہے اور وہ ایسی ایسی باتیں کرنے لگا ہے، تو آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ ہم اس کو جھٹلا سکیں. تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم تین کوشچنز جا کر کے اس آدمی سے کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تین کوشچنز کرو، ٹھیک ہے؟ اگر انہوں نے ان تین کوشچنز کے صحیح جواب دے دیے، جو کہ انہوں نے بتا دیے تھے ان کو کہ بھئی یہ صحیح جواب ہے اس کے، تو پھر تو وہ اللہ کے میسنجر ہیں. لیکن اگر انہوں نے غلط جواب دیے یا کوئی جواب نہیں دے سکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ تین کوشچنز کیا تھے؟ وہ تین کوشچنز میں ایک کوشچن تھا کہ ان سے جا کے پوچھو کہ روح کیا چیز ہوتی ہے. روح، یس الون اکا عن الروح، ٹھیک ہے؟ یہ پوچھو جا کر کے روح کیا چیز ہوتی ہے، جس کو ہم انگلش میں اسپرٹ کہتے ہیں. اچھا، دوسری چیز کہ ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے، اصحاب کہف، پیپل آف دا کیف، ٹھیک ہے؟ اور تیسری چیز یہ تھی کہ ان سے پوچھو کہ ہو واز ذوالقرنین، ذوالقرنین کون تھے، ٹھیک ہے؟ یہ تین کوشچن تھے. اب پہلا کوشچن جو ہے روح کے بارے میں، اس کا جو آنسر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر دیا، جس کو سورہ اسراء والمعراج بھی کہتے ہیں. 15th پارے کے اندر پورا کا پورا 15th پارہ جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل پر ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں چونکہ آنسر دیا ہے تو وہ تو ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے. دوسرا جو کوشچن تھا وہ تھا اصحاب کہف کے بارے میں، تو اس کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل کے اندر ڈسکشن کر چکے ہیں، تو اب اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا جو کوشچن تھا نا وہ تھا ذوالقرنین کے بارے میں، تو اب جو ہے وہ ساری ڈسکشن شروع ہو رہی ہے کہ یہ ذوالقرنین کون تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ یعنی یہ جو ذوالقرنین کے بارے میں کوشچن ہے تو اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر رہے ہیں، اور یہ پھر سٹوری نمبر 5 بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ کہف کی سٹوری نمبر 5، ٹھیک ہے؟ 5 سٹوریز کی ریویژن کریں، اس میں پھر 9 منٹ نکل جائیں گے، تو ابھی ہم ریویژن نہیں کرتے، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ریویژن کر لیں گے کہ کون سی وہ 5 سٹوریز تھیں. تو یہ 5th سٹوری ہے ذوالقرنین کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ ذوالقرنین کا جو لفظ ہے، یہ لفظ جو ہے نا یہ اصل میں یعنی ایک آدمی کا ٹائٹل ہے، ٹائٹل، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی صاحب ہیں جن کا نام ہے سلمان، ٹھیک ہے؟ تو سلمان تو ان کا نام ہے، لیکن کنگ، کہ بھئی وہ کنگ سلمان ہے، تو کنگ جو ہے وہ ان کا ٹائٹل ہوا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کوئی صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کا ٹائٹل ہے، لیکن نام تو ان کا کچھ اور ہے نا، جیسے آج کل پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کے اندر، تو نام ان کا ٹرمپ ہے، پریزیڈنٹ ان کا ٹائٹل ہے. تو اسی طریقے سے ذوالقرنین ہے نا، یہ ان کا ٹائٹل تھا، ٹھیک ہے؟ نام ان کا کچھ اور تھا، ہمیں نہیں معلوم نہیں معلوم کہ ان کا نام کیا تھا، لیکن جو ہسٹری کی بکس ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ شاید ان کا نام سکندر تھا. سکندر، انگلش میں سکندر کو الیگزینڈر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ جو ٹائٹل ان کو دیا گیا تھا، کیوں دیا گیا تھا یہ ٹائٹل، ذوالقرنین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا انہوں نے تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ قرنین کا مطلب ہوتا ہے ٹو قرنز، دو قرن، ٹھیک ہے؟ بیکاز یہ ڈوئل ٹینس ہے، دو قرن. قرن کیا ہوتا ہے؟ قرن کا مطلب ہوتا ہے ہارنز، ہارن، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا سینگ. آج کل بقرعید کا بھی زمانہ آ رہا ہے، رائٹ؟ بلکہ آ چکا ہے بقرعید کا، تو سینگوں سے بڑا واسطہ پڑتا ہے اب اسپیشلی پاکستان انڈیا کے اندر، یہ جو بکرے کے سینگ، تو گائے کے سینگ، تو بیل کے سینگ، ٹھیک ہے؟ تو یہ سینگ ہوتے ہیں نا، انہیں کو قرن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو سینگوں والا، زی کا مطلب ہوتا ہے والا، ٹھیک ہے؟ دا ون آف، ٹھیک ہے؟ دا ون ود ٹو ہارنز، اس کا یہ ترجمہ بنے گا، دو سینگوں والا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو یہ تھے تو انسان، آدمی تھے ہمارے جیسے، تو کیا ان کے سر کے اوپر سینگ تھے؟ کوئی عجیب و غریب قسم کے آدمی تھے؟ نہیں، اصل میں ان کے سر کے اوپر سینگ نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی عجیب و غریب قسم کے بیسٹ ٹائپ کے آدمی نہیں تھے، बल्कि इनको दो सींगों वाला कहते जो है ना, उसकी कोई रीजन थी, और वो रीजन जो है वो 647 पेज के ऊपर इन्होंने लिखी है। ठीक है, वहां से हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई वाज ही नेम्ड ज़ुल्करनैन द वन हैविंग टू हॉर्न्स, यानी दो सींगे। तो रिगार्डिंग इट्स रीजन देयर आर न्यूमरस सेइंग्स एंड स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस, यानी हिस्टोरियंस ने फिर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी हैं, तो उन एक्सप्लेनेशन में फिर डिफरेंस भी है कि भाई किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा। तो सम सेड दैट ही हैड टू कर्ली लॉक्स ऑफ हेयर, ठीक है ना, जैसे शायद चोटियां जिनको कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ अब अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ औरतें चोटियां बनाती हैं, लेकिन कुछ ट्रेडिशंस के अंदर, कुछ कल्चर्स के अंदर मर्द भी चोटी बनाते हैं। ठीक है, तो उस जमाने का कल्चर शायद ऐसा होगा कि मर्द भी जो है ना वो अपने बालों को इस तरह से बांध करके रखते थे, चोटी की तरह, जिस तरह बालों की चोटी होती है, उसको लॉक ऑफ हेयर कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो उनके इस तरह से दो कर्ली लॉक्स ऑफ हेयर थे, देयरफॉर ही वाज कॉल्ड ज़ुल्करनैन। ठीक है, तो जो लॉक्स ऑफ हेयर थे ना वो देखने में सींग लगते थे। ठीक है, क्योंकि चोटी अगर आप इस तरह की बनाए सर के ऊपर कि वो ऊपर की तरफ उठी हुई हो, ठीक है, तो वो देखने में सींग लगेगी दूर से। ठीक है, इस वजह से इनको ज़ुल्करनैन कहते थे। सम अदर्स सेड दैट ही रूल्ड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट की तरफ जो कंट्रीज थे उनको भी ये रूल करते थे, और वेस्ट की तरफ कंट्रीज उनके भी ये बादशाह थे, यानी ये पूरी वर्ल्ड पर रूल करते थे, इतने बड़े बादशाह थे कि पूरी वर्ल्ड पर रूल करते थे। जो तो ईस्ट और वेस्ट को जो है ना गोया के दो हॉर्न्स कह दिया, दुनिया दुनिया के दो हॉर्न्स, तो इस वजह से ना इनको ज़ुल्करनैन कहा करते थे। ही यूज्ड टू बी द किंग ऑफ द टू हॉर्न्स ऑफ द वर्ल्ड। इट अपीयर्स इन सम नैरेटिव्स दैट ही हैड वुंड मार्क्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ हिज हेड। कभी इनको चोट लगी थी और चोट की वजह से इनके दोनों सर के ऊपर, सर के दोनों साइड्स पर ना ऐसे मार्क्स बने हुए थे कि जिनकी वजह से ना उनको लोगों ने ज़ुल्करनैन कहना शुरू कर दिया। अल्लाह नोज बेस्ट। ठीक है, क्योंकि जब कोई बात कंफर्म पता नहीं होती है ना, तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे करके आखिर में ये कह दें कि भाई अल्लाह ज्यादा बेहतर जानते हैं। Who told them to ask Prophet sallallahu alaihi wasallam? जैसे उन्होंने जवाब दे दिया कि the Jews of Medina, ठीक है, मदीना मुनव्वरा के यहूदियों ने मुशरिकीन मक्का को कहा था कि इनसे जा करके ये सारे क्वेश्चंस करो। Did Ilyas alaihi salam had takwini knowledge? हाँ, इलियास अलैहि सलाम भी यही तरह का काम करते थे जो कि हजरत खिजर अलैहि सलाम किया करते हैं। तो ये काम करने के लिए तो तकवीनी नॉलेज की जरूरत पड़ती है ना, तो इलियास अलैहि सलाम के पास भी तकवीनी नॉलेज थी, जैसे खिजर अलैहि सलाम के पास तकवीनी नॉलेज थी। अच्छा, तो ज़ुल्करनैन की जो टाइटल है, इस टाइटल के ये मीनिंग्स हो गए। आर मैन अलाउड टू टाई देयर हेयर इन अ ब्रेड, चोटी को ब्रेड कहते हैं। शरीयत के अंदर इसकी ममानियत यानी मना है, इसकी जो मना होने का जवाब होगा ना वो इस तरह से होगा कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि जी ब्रेड्स बनाने मना है, बल्कि शरीयत के अंदर मर्दों को अल्लाह ताला ने मना किया है औरतों के जैसे बनने से, औरतों की मुशाबहत इख्तियार करने से, सिमिलैरिटी। ठीक है, तो औरतों के अंदर ये बात कॉमन है, यानी इट्स पार्ट ऑफ बीइंग अ वुमन टू हैव ब्रेड्स। ठीक है, तो इस वजह से जो मर्दों के बाल हैं उनके अंदर भी ब्रेड्स बनाना जो है वो मना होगा, कि चूंकि इससे जो है वो औरतों की मुशाबहत बनती है। ठीक है, जिस तरह से ड्रेस जो है वो औरतों की तरह करना अल्लाह ताला ने मना कर दिया मर्दों को, तो उसी तरीके से बालों का भी स्टाइल औरतों की तरह से बनाना जो है वो मना होगा। ठीक है, अच्छा, बाकी आगे कहते हैं कि बट दिस मच ऑलरेडी स्टैंड्स डिटरमिन्ड दैट द कुरान हैज सर्टेनली नॉट गिवन हिम द नेम ऑफ ज़ुल्करनैन। कुरान के अंदर यानी के यानी ये जो नेम है ना ये पहले से नोन नेम था इनका। ठीक है, बिकॉज द आगे जैसे कह रहे हैं ना कि इनफैक्ट दिस नेम केम फ्रॉम द ज्यूज। ठीक है, यानी ज्यूज ने मुशरिकीन मक्का से कहा था कि ज़ुल्करनैन के बारे में पूछो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टाइटल है ये कुरान ने इनको नहीं दिया, बिकॉज कुरान जो है ना वो भी कभी किसी को टाइटल देता है कोई जो कि पहले से नोन नहीं था, ठीक है, लेकिन इनको जो है वो टाइटल कुरान ने नहीं दिया बल्कि ये ऑलरेडी वेल नोन नाम था ज़ुल्करनैन अमंग द ज्यूज। तो ही मे हैव बीन नोन बाय दिस नेम विद देम। व्हाटएवर पार्ट ऑफ द इवेंट ऑफ ज़ुल्करनैन हैज बीन मेंशन्ड बाय द होली कुरान इज नो मोर देन व्हाट इज डिस्क्राइब्ड बिलो। ये हम पढ़ लेते हैं अभी कम से कम कि कुरान ने ना ज़ुल्करनैन के बारे में इतना ही बताया है, ठीक है, वो क्या है कि ही वॉज ए राइटियस एंड जस्ट किंग, ठीक है, नेक किंग थे ये और इंसाफ करने वाले किंग थे, लोगों के दरमियान इंसाफ करने वाले। हु रीच द ईस्ट एंड द वेस्ट, उन्होंने ट्रैवल भी किया, ईस्ट पे भी ट्रैवल किया और वेस्ट पे भी ट्रैवल किया दुनिया के, एंड कॉन्क्वर्ड कंट्रीज इन बिटवीन एंड रूल्ड देयर जस्टली, ठीक है। उस जमाने में ये जो अमेरिकाज हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, उस तक लोग नहीं पहुंचे थे, ठीक है ना, इट्स प्रीटी मच कंफर्म्ड कि अमेरिकाज तक जो इंसान पहुंचे हैं ये आज से 1000 ईयर्स पहले पहुंचे हैं। और ज़ुल्करनैन की जो स्टोरी है ये अंदाजन आज से 4000 ईयर्स पहले की है, 4000 ईयर्स, ठीक है। तो उससे पहले जो अमेरिकाज थे नॉर्थ एंड साउथ, इनके अंदर एनिमल्स रहते थे, राइट, और इंसेक्ट्स वगैरह रहते थे, ये सब फिश रहती थी इनके लेक्स वगैरह के अंदर, इंसान नहीं रहते थे, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट से यहाँ पर क्या मुराद हुई, ईस्ट वेस्ट से मुराद हुई कि जिसको हम आज ईस्ट में या तो जापान कहते हैं, जापान और चाइना, ये बिल्कुल ईस्ट में आते हैं नोन, जो यानी उस वक्त के नोन वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है। और वेस्ट में क्या होगा, जो अफ्रीका का वेस्ट वेस्ट है, जैसे कि मोरितानिया एंड मोरक्को, और जो वेस्ट यूरोप है, ठीक है, जिसमें स्पेन जो है वो वेस्ट मोस्ट कंट्री कहलाएगा यूरोप का, ठीक है। तो यानी इन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जापान के कोस्ट से लेकर के जो स्पेन का कोस्ट है वहाँ तक इन्होंने ट्रैवल किया था और सारे जो जगह थे ना उनको इन्होंने कॉन्कर किया था और इसके ये बादशाह थे। रेड इंडियंस ही की बात आपको बता रहे थे कि वो 1000 ईयर्स पहले पहुंचे थे यहाँ पर अमेरिकाज में, ठीक है, 1000 ईयर्स, ये जो आज जो अमेरिका में लोग रहते हैं ये 400 ईयर्स पहले पहुंचे थे, रेड इंडियंस 1000 ईयर्स पहले पहुंचे थे, और रेड इंडियन से पहले यहाँ पर इंसानों का पता नहीं चलता, ठीक है। अच्छा, ऑल सोर्स ऑफ मींस हैड बीन प्रोवाइडेड टू हिम बाय अल्लाह ताला इन ऑर्डर टू हेल्प हिम अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, यानी ये नेक भी आदमी थे और नेक आदमी के साथ ऐसा होता है कि अल्लाह ताला की मदद भी होती है, तो अल्लाह ताला ना उसको फिर जो उसकी जरूरियात होती हैं उनके पूरा करने के लिए चीजें भी पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि किंग थे और इन्होंने इंसानों के ऊपर रूल करना था और उनके दरमियान जो है वो एक अमन और इंसाफ के साथ हुकूमत करनी थी, तो अब इतने बड़े मुल्क के ऊपर ये कैसे हुकूमत करेंगे, तो उसके लिए जो भी चीजें उनको चाहिए होती होंगी अल्लाह ताला उनको प्रोवाइड कर देते होंगे, ठीक है। तो यही मतलब है यहाँ पर कि जैसे जो भी होगा, जो भी तरीका होगा उस जमाने में रूल करने का, तो उसके लिए टूल्स अल्लाह ताला ने इनको प्रोवाइड किए हुए थे। ऑन द रूट ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट ही ट्रैवल्ड इन थ्री डायरेक्शंस टू द फार वेस्ट, ठीक है, जैसे अभी बताया मोरक्को, मोरितानिया वगैरह, और यूरोप के अंदर स्पेन वगैरह हो गया, एंड टू द फार ईस्ट, जैसे कि फार ईस्ट के कंट्रीज हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, और जो भी है उस जमाने में शायद ऑस्ट्रेलिया में भी कोई नहीं रहता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी लोग बहुत बाहर में जा करके पहुंचे हैं। तो फार ईस्ट जो है वो चाइना वगैरह को ही कंसिडर करेंगे, एंड देन टू द माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट के अलावा नॉर्थ की तरफ भी इन्होंने ट्रैवल किया था, और ये जो माउंटेन रेंज नॉर्थ है ना, तो इससे लोग समझते हैं जैसे कि हिमालयाज हैं, हिमालया पहाड़ जिनको कहते हैं, इनकी पूरी रेंज है ये हिमालयाज की, ठीक है, तो वो हैं। फिर उसके अलावा कॉकेशियन इलाके जो आते हैं, जिसको आज के दौर में दागिस्तान और चेचनिया वगैरह कहा जाता है, तो ये पूरे माउंटेनियस रीजन्स हैं, बहुत इनके यहाँ पहाड़ हैं सब कुछ, तो ये वहाँ भी ट्रैवल किया था इन्होंने। At the last mentioned place, he closed the pass in between two mountains by a wall cast in molten metal, which made it possible for the people of the area to stay protected against the pillage of Gog and Magog. ठीक है, याजूज एंड माजूज, उनको इंग्लिश में गॉग एंड मगॉग कहते हैं. तो आखिर में जो जिस जगह ये पहुंचे थे अपने ट्रैवल्स में, तो वहां पर इन्होंने ये सद्दे सिकंदरी जिसको कहते हैं ना, द वॉल ऑफ अलेक्जेंडर, वो बनाई थी इन्होंने. ठीक है, वो क्यों बनाई थी? ताकि वहां के रहने वाले जो इंसान, नॉर्मल जो लोग होते थे, उनको याजूज और माजूज से बचाया जा सके. ठीक है, तो ये थोड़ी डिटेल है जो कि कुरान ने हमें बताई है. अब इसके ऊपर फिर बहुत सारी तफसील हमने इंशाल्लाह अगली क्लासेस के अंदर पढ़नी है कि भाई ज़ुल्कर्नैन के बारे में हिस्टोरियंस ने हमें क्या बातें बताई हैं, और इसी के फिर डिस्कशन में याजूज और माजूज के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ इंशाल्लाह डिस्कस करना है. तो वो चूँकि आज का टाइम मुकम्मल हो गया, तो वो अगली क्लास में करेंगे. अगर किसी को पहले से आगे का स्टडी करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आगे से रीड करके भी आएंगे क्लास के अंदर, और पीछे जो आपको चीज़ें पढ़ाई हैं तो उनको भी ज़रा सा रिव्यू कर लिया करें, ताकि जो हमने पढ़ाई हैं वो सारी सारी आप भूल ना जाएँ, बल्कि आपको याद रहें. कैन वी स्टिल सी द वॉल? वी डोंट इवन नो वेयर द वॉल इज. ठीक है, ये इनकी जो वॉल है ना, ये अभी तक किसी को सही तरह से पता नहीं है. कुछ लोगों ने कहा है कि हाँ उन्होंने देखी है, लेकिन वो हमें कोई एग्जैक्टली बता नहीं सके कि जी कहाँ देखी है, बिकॉज वो बहुत पुराने ज़माने में देखी थी, तो हमें पता ही नहीं है कहाँ पर है, तो जाके देखेंगे कैसे उसको. मैं ठीक है, और कोई सवाल है किसी को? चलें फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.